Şitici. Şitici. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, जिसमें हम देश विदेश से आने वाले हिंदी प्रेमियों और जो हिंदी में रुचि रखने वाले हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं, उनका साक्षात्कार करवाकर हम आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें आपको बहुत से लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। ये आज बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमारे साथ भी ऐसी एक हस्ती हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं, हम उनका परिचय आपको मिलवाते हैं, करवाते हैं उनसे आपकी भेंट। नमस्कार आराधना जी।
नमस्ते शशि दुकान जी।
आपका स्टूडियो में हार्दिक अभिवादन है। चले मैं अपने श्रोताओं को बताती चलूं, श्रोताओं को कि परिचय के रूप में आप लेखिका, पत्रकार, संस्कृति कर्मी और उगना नाट्य मंडली, जो सिंगापुर में स्थित है, आप उसकी संस्थापक हैं और विभिन्न साहित्यिक विधाओं में उनकी कलम चलती है। मैं जितना परिचय देती जाऊं बस नहीं होगा, ऐसा ना हो कि हमारा समय सिर्फ उसमें ही समाप्त हो। हम उनके मुंह से कुछ सुनना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे आराधना जी, किस मकसद से, किस उद्देश्य से आप मॉरिशस में हैं?
मैं कहूंगी कि ये एक संयोग है और संयोग का बड़ा सुंदर कारण है और वह भगवत गीता। जब हम आ रहे थे यहाँ पे मॉरिशस में, बुलावा आया था विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से, हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में 20 सितंबर को यहाँ पे एक जो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में नाट्य प्रस्तुति होनी है। उस नाट्य प्रस्तुति में हमारी मंडली भी सहभागी है।
बहुत अच्छा
जी। और यहाँ पे जो वाकवा रंग भूमि कला मंदिर है, उनके कलाकारों के साथ मिलकर श्री राजकिरण बम्मा जी और श्री लिम्बाजी भिवाजी के निर्देशन में हम एक नाट्य प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे और वो है भगवत गीता पर।
अच्छा, तो उसका शीर्षक बताएं, हमें बड़ी उत्सुकता हो रही है जानने की।
जी, नाटक का हमने शीर्षक ही रखा है भगवत गीता नाट्य प्रस्तुति।
तो चले, जैसे कि आपने बताया 20 तारीख को शनिवार का दिन है
जी,
बहुत से लोग देखने के लिए वहाँ उपस्थित होंगे। तो मुझे सूत्रों से पता चला है कि जिस तरह से आप हिंदी से बहुत समर्पित हैं, हिंदी के लिए समर्पित हैं और कई विधाओं में आप लिखते हैं, उसी दिन जैसे कि विश्व हिंदी दिवस जो है तो 14 सितंबर को मनाया गया, लेकिन विश्व हिंदी सचिवालय जो है, हिंदी दिवस जो है, बड़े भव्य रूप से 20 तारीख को शनिवार के दिन 10 बजे से मना रहा है। और उसमें, उस कार्यक्रम में आपकी पुस्तक का अवलोकन होगा। मैं चाह रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारत मुझ में बसता है। जब जहाँ भारत की बात आती है तो कुछ एक अच्छी जो भावनाएं उठ निकलती हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगी। जो कविताओं का संकलन है भारत मुझ में बसता है, उस किताब का जो है आपका वहाँ पर जो है लॉन्चिंग होगी। आप मुझे बताएं उस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं, कैसे पुस्तक के लिखने की आपकी प्रेरणा हुई, कितनी उसमें कविताएं हैं, हमारे श्रोता जो हैं वो सुनेंगे।
जी, बहुत सारे साझा संकलन में मेरी कविताएं, मेरे लिखे हुए आलेख, कहानियाँ और अन्य विधाओं की जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हो चुकी थी। और ये सबका आग्रह था कि तुम्हारा अपना एक एकल संग्रह होना चाहिए।
बिल्कुल।
और शुरुआत कविताओं से क्यों नहीं। तो मैंने इस कविता संग्रह को लिखने में समय लिया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जैसे 108 मन के होते हैं माला में, तो मेरी इस पुस्तक में कम से कम 108 कविताएं हों और 9 अंक, जैसे नवदुर्गा का होता है रूप। वो शुभ अंक, तो 9 खंडों में विभाजित है ये पुस्तक और 9 अलग अलग विषयों पर लिखी हुई कविताओं का संकलन है भारत मुझ में बसता है।
अच्छा।
ये शीर्षक है मेरी इस कविता का, जो मेरी प्रतिनिधि कविता बनी थी। और इसीलिए जब ये शीर्षक का चयन होना था, मुझे लगता है जैसे मॉरिशस की धरती पे आने के बाद और इतनी सारी जानकारी के बाद, मुझे यही लगता है कि भले ही जो एक कविता का एक अंश है कि भले पासपोर्ट का रंग बदले दिल में तिरंगा मचलता है, मैं जाऊं जहां जहां भी रहूं एक भारत मुझ में बसता है।
बहुत खूब, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप उगना नाट्य मंडली जो कि सिंगापुर में है वहां उसकी संस्थापक हैं, वैसे आपकी जड़ें कहां से हैं? लग रहा है जो भारत की बात आई कि भारत मुझ में बसता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उजागर होता है आपकी कविता के इस संकलन से।
जी, मेरी जड़ें मिथिला में हैं। अच्छा। माँ सीता की जन्मभूमि मिथिला, और आप कहें तो बिहार जो राज्य है उसमें स्थित है एक जिला जिसका नाम है दरभंगा।
ओ, सुना हुआ है।
जी, जो हाँ। मधुबनी के बिल्कुल पास में है। तो दरभंगा और मिथिला आप कह सकते हैं कि केंद्र भूमि, हृदय स्थली है मानी जाती है। वहाँ मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण वहीं हुआ। तो मिथिला की माटी में रची बसी मैथिली मेरी मातृभाषा है, उसमें भी मैं लेखन करती हूँ, उसमें भी संपादन सहयोग का अनुभव प्राप्त है मेरे पास। तो जिसलिए जब आप उगना नाट्य मंडली का जिक्र कर रही थी, उसकी शुरुआत ही मैंने सबसे पहले जो मिथिला की एक बहुत ही प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं आप हमारे लिए तो इतिहास ही है, पर अगर आप सामान्य जन की बात करें तो अगर उनके लिए वो दंत कथा है, लोक श्रुति है, तो विद्यापति जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं।
बिल्कुल।
और कहा जाता है कि जो मिथिला में उगना यानी कि महादेव स्वयं उगना रूप में प्रकट हुए थे, उनके घर सेवक बन के आए थे, और हमने सबसे पहले जो मैथिली में नाटक किया था वो उगना, इसीलिए नाट्य मंडली का नाम भी मैंने उगना से रखा था मैंने।
बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, जैसे आप लेखिका होने के बाद पत्रकार जो है, तो पत्रकारिता कैसे आप में आई?
जी, मैंने जब पढ़ाई की थी तो हमारे तरफ बिहार में ना हर एक बच्चे का, प्रतिभाशाली बच्चा अगर है तो उनके माता पिता का सपना होता है कि वो आईएएस की तैयारी करे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के दौरान ही मुझे पता चला कि भारतीय जनसंचार संस्थान जो है वहाँ पत्रकारिता का एक बहुत ही सुंदर सा एक कोर्स किया करवाया जाता है। तो उसमें मैंने दिया, आवेदन दिया, और उनका जो उनकी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को पूरा किया। और मुझे नहीं पता था कि मैं रति अग्रवाल जो पुरस्कार है वो भी प्राप्त करूंगी उसी आवेदन प्रक्रिया के दौरान, और मेरा चयन हुआ। मैंने हिंदी पत्रकारिता का वहाँ अध्ययन किया और वहाँ से स्टार न्यूज़ में गई मैं, जो मुंबई में स्थित था।
बिल्कुल।
तो मैंने वहाँ टेलीविजन पत्रकारिता का जो मेरा अनुभव है, मैं उस चैनल में, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल था, वहाँ से मैंने प्राप्त किया। और उसके बाद लगभग 5 वर्षों तक मैं एक टीवी पत्रकार के रूप में अलग अलग कह सकते हैं कार्यक्रमों से जुड़ी रही, प्रोडक्शन का काम किया, रिपोर्टिंग का काम किया। तो ये अनुभव मेरा टेलीविजन पत्रकारिता का रहा।
बहुत खूब। और अब तीसरी बात जो मैं आऊँगी, नाटक से जुड़ना, ये तीन चीज़ें बिल्कुल अलग अलग, जिनका रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आप तीनों को बहुत अच्छी तरह से संयमित रूप से संभाले हुए हैं। और नाटक में दिलचस्पी कैसे हुई, और आप जैसे आपने कहा कि 20 तारीख को आप नाटक में भाग ले रही हैं और उसमें बहुत उम्दा रोल निभा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
जी, ऐसा है कि मैंने बचपन से ना लोगों को ध्यान से देखने, सूक्ष्म अन्वेषण या अवलोकन करने की जो एक होती है ना क्षमता, वो बचपन से थी।
बहुत।
तो अगर कोई मिलने भी आ रहा है तो वो कैसे बोलता है, बोलने की शैली कैसी है, हाव भाव कैसे है, भाव भंगिमा है, उसका मैं बड़ा गहन सूक्ष्म अध्ययन किया करती थी। उसके बाद समाचार वाचिकाओं के कहने का जो नाटकीयता होता है उसका भी मैं करती थी। तो ये दोनों चीजें थी। और जब मैं गई भारतीय जनसंचार संस्थान में, वहां एक नाटक लिखने की बात हुई, मैंने लिखा, पत्रकारिता पर ही आधारित था, तलाश जारी है, उसका चयन हुआ, क्योंकि 5-6 टीमों में से मेरी लिखी हुई नाटिका जो है वो सबसे अच्छी मानी गई, उसका मंचन मैंने किया था। उसके पहले विद्यालय के दौरान एक नाटक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। वहाँ एक नाटक की थी भूमिका, पर मैं कह सकती हूँ कि IMC जो, जहाँ हम भारतीय जनसंचार संस्थान में हमारी जो नाटक का जो हुआ उसका मंचन हुआ, उसके बाद जब मैं सिंगापुर आई हूँ उसके बाद नाटक से लगाव रहा, लेकिन वो अलग रूप में आता रहा क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र था।
हाँ, वही मैंने कहा ना, दो अलग तीन अलग क्षेत्र।
जी
जी, एक साथ आना
मुश्किल था। तो उसके बाद जब मैं सिंगापुर आई हूँ 2022 में विद्यापति समारोह, उसकी परिकल्पना संयोजन और निर्देशन और आयोजन में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और उसी में ये नाटक वहां से शुरुआत हुई थी। और उसके पहले 2019 से मैं हिंदी नाटक में, जो मैंने खुद लिखा था, अब तक जो लगभग मैंने नाटक किए हैं लगभग मेरे अपने ही लिखे हुए हैं।
बहुत खूब।
तो अभिनय, लेखन और निर्देशन, नाटक की जो तीन स्तंभ हैं उन तीनों में ही मेरा जुड़ाव रहा है। और अब देखिए भगवत गीता पर आधारित जो नाटिका होने वाली है 20 सितंबर को, उसमें मैं श्री कृष्ण की भूमिका निभा रही
हूँ। बहुत खूब, और हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि हमारे मॉरिशस की जनता जो है जो इस नाटक को देखेगी वो सराहेगी, और जिस तरह से आपका अनुभव नाटक में, पत्रकारिता में, फिर लेखन में जो है वो सब इसमें उतर कर ज़रूर उन्हें को देखने को मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कभी कभी इंसान सोचता है कि बहुत जब अलग रास्ते होते हैं उनको संभालना या उनको ले जाना आगे संभव नहीं होता है, उसके बारे में आप क्या कहने चाहेंगे? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि मल्टी स्किल जिसको कहते हैं, जब कोई एक रास्ता निभा लिया तो वो एक रास्ते पर ही चले जाते हैं। ऐसा क्या ज़रूरी है कि इंसान हर चीज़ें कर सकता है, जैसे आपने हैं, पत्रकारिता है, लेखन है, फिर संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, और हिंदी से उसके बाद जुड़ना बहुत बड़ा कार्य होता है, उसके बारे में कुछ कहें।
मुझे लगता है एक बार बाबूजी एक संवाद कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने एक बात कही थी कि एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्हें कहीं आमंत्रित नहीं किया गया था, तो वो वहाँ पहुँचे स्वयं ही, तो वो कहा कि बिना बुलाए क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा माँ सरस्वती ने मुझे ये वरदान दिया है, और अगर मैं उनके वरदान का सम्मान करते हुए वहाँ पहुँच कर अपनी बात ना कहूँ तो उस वरदान का अपमान होगा। तो मुझे लगता है ये वरदान माँ सरस्वती का रहा है, उनकी कृपा रही है। आप ये बताइए आज ये संयोग वो ईश्वर की ही कृपा है कि माधुरी रामधारी जी जो हैं उन्होंने बुलावा भेजा, उन्होंने आमंत्रित किया, और ये संयोग मुझे प्राप्त हुआ। मेरी मंडली के जो सदस्य हैं, श्री राजीव कुमार मिश्रा जी हैं, श्री श्वेता वर्मा सिंघल जी हैं, हम तीनों को ये प्राप्त हुआ कि हम यहाँ आए और निर्देशक से सीखें, सबसे सीखें, और ये नाटक मंचन यहाँ कर सके। तो और उस नाटक में भी देखिए लेखन का भी कार्य हुआ है मेरा, अभिनय भी किया है मैंने, और निर्देशन के पक्ष से भी बहुत सूक्ष्मता से जुड़ी हुई हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे सीख सकूं। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर की कृपा है, वो करवा लेते हैं।
उनकी कृपा हो तो सब संभव है
जी,
और इसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं थोड़ी सी आपके जो संकलन, पहला एकल संकलन जिसमें आपने कहा कि भारत मुझ में बसता है, इसमें वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भारत से जुड़ा हुआ बहुत कुछ होगा, देशभक्ति की भावना तो कूट कूट के भरी होगी। थोड़ा सा अपनी कविताओं के बारे में बताएं, और एक दो कविता जो है उसमें से जो आपको सबसे अच्छी लगी उसके बारे में चर्चा करेंगे।
ये आपने जो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया, क्योंकि आपने कहा कि सबसे प्रिय, जैसे किसी भी लेखक के लिए उसकी रचना एक संतान की तरह होती है।
ये सही कहा आपने, पर अभी कई कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ आपको अंदर तक जोड़ती हैं।
जी जी, तो ये जो मैंने शीर्षक आपको रचना सुनाई थी, कह के सुनाई थी, उसका एक अंश मैं गा के सुनाऊंगी
जरूर।
इस प्रवासी काया में मेरा देसी मन ये कहता है, मैं जाऊं जहां जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है। मैं जाऊं जहां जहां भी रहूं, एक भारत मुझ में बसता है।
बहुत खूब, बहुत खूब, और मैं दिल से कह रही हूँ कि आपकी ये पुस्तक जो है वो लोग पढ़ेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। अंत में आप हमारी श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत संक्षिप्त शब्दों में इशारा हो रहा है कि समय हो रहा है, कहीं क्या कहना चाहेंगी?
मैं बस वो काव्यात्मक संदेश ही देना चाहूँगी, क्योंकि ये हम नाटक कर रहे हैं, गीता पर आधारित है, और मेरी एक कविता है जो मेरे पति देव को बहुत प्रिय है, गीता का सार, उसका एक अंश जो मेरी बिटिया को भी, या रख जीवन कागज कोरा, या खींच कर्म से चित्र।
चित्र, बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बहुत कम शब्दों में मेरी बात को जो है स्वीकारा, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद, और हम आपको बहुत सी शुभकामनाएं देंगे कि आपका, आपकी जो कविता संग्रह जो यहाँ पर जिसका अवलोकन होगा वो हमारे श्रोता जो है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, और हिंदी के लिए जब आप कार्य कर रही हैं उसके लिए आपको दिन प्रतिदिन आप प्रगति की ओर बढ़ें और संग्रह लिखें ताकि आपके पाठक जो है आपको सराहें और उनको कुछ नया सुनने देखने को जो है प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटी सी बातचीत के लिए आराधना जी, और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद शशि दुकान जी, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और यहाँ आमंत्रित किया।
नमस्ते।
नमस्ते।
क्षितिज क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।